कालिदास की जन्मभूमि। कोई कहते हैं कालिदास बंगाल में हुए, तो कोई कश्मीर में, कोई हिमवत प्रदेश में, तो कोई पाटलिपुत्र में, और किसी का कहना है कि वे मालव में पैदा हुए। परंतु कालिदास ने अपने ग्रंथों में उज्जैनी का बहुत अधिक वर्णन किया है। रामगिरि से अलका यात्रा के लिए मार्ग की वक्रता होने पर भी यक्ष का उज्जैनी जाने के लिए आग्रह और वहाँ की छोटी छोटी नदियों के नाम निर्देशन से भी कवि की जन्मभूमि मालव की राजधानी उज्जैनी ही मालूम होती है। इसी तरह नवम शताब्दी के राजशेखर ने सुयते चोज्जैन्याम साहसांको नाम राजा इह कालिदास मेंठावत्ता मर रूप सूर भारवय हरिश्चंद्र गुप्त परीक्षिता विशालायाम ऐसा लिखकर साहसांक दक्षिण विक्रमादित्य राजा की उज्जैनी में कालिदास की काव्य परीक्षा की बात लिखी है। वर्तमान सिंधिया राज्य के अंतर्गत प्राचीन मालव प्रदेश स्थित मंदसौर जगत में प्राचीन नाम दसपुर नाम के प्रसिद्ध नगर व उसके निकटवर्ती स्थान के कालिदास उत्पन्न हुए थे। इस विषय में विश्वसनीय प्रमाण है। महामहिम हरप्रसाद शास्त्री ने इस विषय में गवेषणा की है और प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने भी इस मत को स्वीकार कर लिया है। कालिदास का संप्रदाय। महाकवि कालिदास किस संप्रदाय को मानने वाले थे इस बात का परिचय उनके ग्रंथों के मंगलाचरणों से मिल जाता है। उन्होंने रघुवंश के आरंभ में वागर्था विसंपक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ इस श्लोक से पार्वती और परमेश्वर का वंदन किया है। उन्होंने इसी प्रकार मालविकाग्नि मित्र एकैश्वरीय स्थितोपि प्रणत बाहु फले यह स्वयं कृतिवासाः कांता समृष्ट देहोप्य विषय मनसाम यह परस्ताद्यतीनाम अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नम जगदपि तनुर्भिर्विभ्रतो नाभिमानः सन्मार्ग लोकनाय व्यपनयतु स वास्तामसीम वृत्तिमीशः। इस श्लोक में अष्टमूर्ति शंकर की प्रार्थना की है। इसी प्रकार विक्रमोवर्षी त्रोटक ने वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्यं स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तर्यस्य मोक्षभिर् नियमित प्राणादिभिर्मुग्यते सस्थाणुः स्थिर भक्ति योग सुलभो निःश्रेयसायास्तु वः। इस मंगलाचरण से और अभिज्ञान शाकुंतल स्थित यह सृष्टि स्पष्टराज्या वहति विधिहूतम या हरिर्वाच होत्री ये द्वे कालम विधत्तः सति विषय गुणा क्या स्थिता व्याप्त विश्वम यमाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः सत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वास्तभिरष्टाभिरीशः। इस मंगलाचरण से भी महाकवि कालिदास शैव थे, यह बात पूर्ण रूप से प्रमाणित हो जाती है। परंतु कुमार संभव के द्वितीय सर्ग में ब्रह्मा जी की और रघुवंश के दशम सर्ग में विष्णु की स्तुति को देखने से ब्रह्मा और विष्णु पर उनकी आस्था थी, यह बात ज्ञात होती है। कुमार संभव के एकयो मूर्तिर्विभेदे त्रिआशा सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम् विष्णोर्हरस्तस्य हरि कदाचित वेदास्तयोस्ताव विधादुराद्यौ। इस श्लोक से भी यही बात स्पष्ट रूप से प्रतिपादित हो जाती है। इस प्रकार विश्व के अनुभव महाकवि कालिदास सांप्रदायिक संकीर्णता से दूर थे, यह बात उन्हीं की लोकोत्तर कमनीय कृतियों के निरीक्षण से हृदयंगम हो जाती है। कालिदास की कवित्व शक्ति और शास्त्रीय पांडित्य महाकवि कालिदास की रचनाओं में वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ की प्रधानता है, अतः उनमें ध्वनि की प्रचुरता है। इदम् उत्तमम् अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्या ध्वनिर्बुधये कथितः। रिकॉर्ड में काव्य प्रकाश 1-4। उद्भट आलंकारिक मम्मट भट्ट की इस उक्ति के अनुसार ध्वनि ही उत्तम काव्य माना गया है। महाकवि कालिदास मानव हृदय के साथ जड़ प्रकृति का जो सूक्ष्म संबंध दिखा सके हैं, यही उनकी लोकोत्तर विशेषता है। मूक और जड़ पदार्थ भी उनके समीप अनुभूति पूर्ण हो जाते हैं। उनकी रचना में स्थावर और जंगम सभी पदार्थ परस्पर में सुख दुख का अनुभव कर लेते हैं। यूं तो कालिदास रस सिद्ध महाकवि हैं, परंतु वे विशेषता श्रृंगार करुण शांत और अद्भुत रस का प्रतिपादन करने में सिद्धास्त हैं। आर्य संस्कृति और कालिदास इन दोनों में भूषण भूत भाव सामान्य हो गया है। आर्य संस्कृति को वर्णनीय विषय बनाकर अपनी असाधारण कला का प्रदर्शन कर कालिदास को लोकोतिशाही कवि बन गए हैं। कालिदास जैसे कवि की लेखनी से उद्भासित होकर आर्य संस्कृति जगत द्वंद और धन्य हो गई है। महाकवि कालिदास ने विद्या और कलाओं का पूर्ण स्वरूप से अवगाहन के साथ अनेक देश देशांतरों का परिभ्रमण किया था। प्रकृति का कमनीय सौंदर्य उनकी दृष्टि में उद्भासित हुआ था, जिसका प्रमाण उनकी प्रकृतियों के निरीक्षण से मिल जाता है। बहिर जगत के सूक्ष्म निरीक्षण के साथ अंतर जगत का भी उन्होंने सूक्ष्म रूप से आकलन किया था, जिसके कारण मनोवैज्ञानिक मनोहरता उनके काव्यों में यत्र तत्र प्रतिफलित देखी जाती है। हम यहाँ पर कतिपय पंक्तियों में कालिदास की बहुशुद्धता का कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं। उनकी विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए तो एक स्वतंत्र ग्रंथ की आवश्यकता है। इतिहास और पुराणों में कालिदास का पर्याप्त ज्ञान था। इनका प्रमाण इतिहास और पुराण के ही कथानक पर आश्रित उनके काव्यों और नाटकों के निरीक्षण से मिल जाता है। यद्मोघम मपामंत रुप्तम बीजमज त्वया अतश्चराचरम विश्वम प्रभुस्तस्य गीयसे। इस श्लोक में महाकवि ने अप एव ससल जादव तासु बीजमवासृजत एक आठ मनुस्मृति इस उक्ति को कैसे रमणीयता पूर्वक अपनी रचना में सन्निवेशित किया है। त्वामामन मनन्ति प्रकृतिम पुरुषार्थ प्रवर्तिनीम तद्दर्शिनम उदासीनम त्वामेव पुरुषम विदुः। विक्रम कुमार संभव 2:13। इस श्लोक में कवि ने सांख्य दर्शन के प्रकृति और पुरुष का स्वरूप प्रदर्शित किया है। लब्ध प्रतिष्ठा प्रथमम यूयम किम बलवत्तरैः अपवादैरिवोत्सर्गाः कृतव्या वृत्तयः परैः। विक्रम कुमार संभव 2:27। महाकवि ने इस श्लोक में उपमा अलंकार के द्वारा व्याकरण के उत्सर्ग और अपवाद का कैसी निपुणता से प्रदर्शन किया है। तस्मिन्नुपायाः सर्वे नः सूरे दतेः क्रियाः धीर्यवन्त्यौष धानीव विकारे सन्निपातिके। व्याकरण में कुमार संभव 2:48। इस श्लोक में महाकवि ने उपमा अलंकार के द्वारा आयुर्वेद शास्त्र के सन्निपात ज्वर का स्वरूप किस प्रकार विशद भाव से प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार मालविकाग्नि मित्र में छेदो दंतस्य दाहो वा चतुश्चारक्तम क्षणम एतानि दृष्ट मात्राणाम मायुष्याः प्रतिपत्तयः। इस श्लोक में सर्प दंशन की चिकित्सा का वर्णन किया है। अयस्कांतेन लोहवत् इस उक्ति में महाकवि ने चुंबक का गुण दिखलाया है। इस प्रकार महाकवि ने निम्नलिखित श्लोकों में फलित ज्योतिष में अपना परिचय दिखलाया है। दृष्टि प्रपातम परिहृत्य तस्य कामः पुरः शुक्रमिव प्रयाणे। विक्रम कुमार संभव 3:43। तिथौ च ज्यामित्र गुणान्वितायाम। विक्रम कुमार संभव 7:1। मैत्रे मुहूर्ते ससलांचनेन योगम गतास्तुत्तर फाल्गुनीषु। विक्रम कुमार संभव 7:6। इसी प्रकार महाकवि ने रघुवंश के निम्न श्लोक में उपमा अलंकार का प्रयोग कर किस प्रकार ज्योतिष और राजनीति के ज्ञान का प्रदर्शन किया है। ग्रहैः ततः पंचभिरुच्य संत्रयैः सूर्यगैः सूचितुर्भाग्य संपदम् असूत पुत्र समये सची समा प्रसादना शक्ति रिवार समक्षयम् विक्रम में रघुवंश 3:13। इसी प्रकार अवयमिचेनामनधेति किन्तुम् लोकापवादो बलवान मतो में छाया ही भूमे शशिनो मलत्ते नारोपिता शुद्धिमतः प्रजा भी विक्रम में रघुवंश 14:40। इस श्लोक में महाकवि ने चंद्र पर भूमि की छाया पड़ने पर चंद्र ग्रहण कहा जाता है ज्योतिष सिद्धांत की इस उक्ति का कितनी मनोहरता से दर्शन किया है। पर्यंक बंदस्तिर पूर्व काय निज्वायतम सन्नमितो भयांसम उत्तान पाणि द्वय सन्निवेशात् प्रफुल्ल राजीव दिवांक भंग मध्य कुमार संभव 3:45। इस श्लोक में महाकवि ने योग शास्त्र के आसन को दिखलाया है। तौ संदिशु व्यंजित वृत्ति भेदम रासांतरेषु प्रतिबद्ध रागम अपश्यताम अप्सरसाम मूर्तम प्रयोगमाद्यम ललितांगहारम चक्र में कुमार संभव 7:91। इस श्लोक में महाकवि ने नाट्य शास्त्र का परिचय दिया है। षट संजीवादिनी के कार्यधा भिन्ना शिखंडे भी विकट में रघुवंश 1:19। महाकवि ने इसमें गांधर्व वेद विकट में संगीत शास्त्र का परिचय दिया है। रघुवंश के चतुर्थ सर्ग में और मेघदूत में महाकवि ने जो अपना भौगोलिक ज्ञान को दिखलाया है वह प्रसिद्ध है ही, जिसे अच्छी तरह वर्णन करने के लिए एक विशिष्ट निबंध की आवश्यकता है। इस प्रकार हमने महाकवि कालिदास की बहुसूत्रता का द्योतन करने के लिए उनके कुछ शास्त्रीय पांडित्य का निदर्शन किया है। उनकी रचना की अलंकारिक विशेषता के प्रदर्शन के लिए बहुत समय और विशेष ग्रंथ की अपेक्षा है, इसलिए हम इस विषय को यहाँ पर समाप्त करते हैं। कालिदास की रचनाएं। निम्नलिखित काव्य कालिदास की रचना के तौर पर निर्विवाद रूप में प्रसिद्ध है ऋतु संहार विकर्ण में खंड काव्य और साहित्य जगत में विख्यात लघु त्रयी मेघदूत विकर्ण में खंड काव्य और दो महाकाव्य कुमार संभव तथा रघुवंश। इनमें मेघदूत विस्तृत काव्य है। कालिदास के दो नाटक और एक त्रोटक इस प्रकार कुल 3 रूपक प्रसिद्ध हैं। इनमें मालविकाग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतल ये दो नाटक हैं और विक्रमोर्वशी नामक एक त्रोटक है। इन तीनों में अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास की विश्वबंध्य तथा सर्वोत्तम रचना है। इनके सिवाय श्रुतबोध विक्रम छंदो ग्रंथ श्रृंगार तिलक नरोदय विक्रम श्लेषमय खंड काव्य पुष्पमाण विलास चित गगन चंद्रिका विकट में देवी स्तुति नवरत्न माला विकट में देवी स्तुति घटकर्पर काव्य और ज्योतिर्विदाभरण विकट में ज्योतिष ग्रंथ कुंतेश्वर दौत्य अम्बास्तव कल्याणस्तव काली स्त्रोत्र काव्य नाटकालंकार गंगाष्टक चंडिका दंडक स्तोत्र रक्षास्तव दुर्घट काव्य मकरंदस्तव मंगलाष्टक महापद्म शतक रत्नकोश राक्षस काव्य लक्ष्मीस्तव लघुस्तव विद्वत विनोद काव्य वृंदावन काव्य वैद्य मनोरमा शुद्ध चंद्रिका श्रृंगार साटक श्रृंगार सार काव्य श्यामला दंडक और सेतुबंध ये भी कालिदास के ग्रंथ बतलाए जाते हैं। इनमें कुछ अप्राप्य भी हैं, परंतु रचना शैली की विभिन्नता के कारण सब लोग इनको कालिदास कृत नहीं मानते हैं। अब ऋतु संहार आदि ग्रंथों का संक्षेप में परिचय देते हैं। ऋतु संहार रचना शैली में कालिदास की अन्य रचना की समान प्रौढ़ी न होने से यह उनकी प्राथमिक कृति मानी जाती है। उत्तर मल्लिनाथ की टीका नहीं है और इससे पद्य कहीं भी उद्धरण के तौर पर नहीं मिले हैं। इस कारण इसे पहले कुछ विद्वान कालिदास की रचना नहीं मानते थे। इसमें 6 सर्ग हैं। इसमें ग्रीष्म में आरंभ कर वसंत तक कुल 6 ऋतुओं का अनेकानेक छंदों में मनोरम रीत से वर्णन किया गया है। इसमें 144 पद्य हैं। कुमार संभव ऋतु संगार के अनंतर यह कवि की दूसरी रचना है। यह महाकाव्य है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। इसमें कार्तिकेय का जन्म और उनके चरित्र का वर्णन मुख्य विषय है। हिमालय पर्वत के वर्णन से आरंभ कर पार्वती का जन्म, तारकासुर का उपद्रव, उसके वध के लिए शंकर के वीर जात पुत्र के लिए शिवतोपभंग करने के निमित्त देवताओं का कामदेव को शिव जी के पास भेजना, उनके नेत्र वाणी से कामदाह रति विलाप, रति को सांत्वना देना, पार्वती का तपश्चरण और उनका शिव जी के विवाह, इतने विषय 1 से लेकर 7 सर्ग तक वर्णित है। 8 सर्ग तक मल्लिनाथ जी की टीका उपलब्ध होती है। इस कारण से और 9 सर्ग से लेकर अंत तक इसकी रचना में कालिदास की शैली से भिन्नता के कारण भी अर्वाचीन विद्वान लोग इसके 1 से लेकर 8 सर्ग तक के भाग को ही कालिदास कृति मानते हैं, जबकि यह महाकाव्य माना गया है। तब यह कैसे 8 सर्ग तक होगा, क्योंकि सर्गाष्टाधिकायी इस महाकाव्य के लक्षण के अनुसार 8 सर्गों से अधिक होना महाकाव्य के लिए वांछनीय है। इस प्रकार 8 ही सर्ग तक का भाग्य इसका स्वरूप माना गया जाए तो कुमार संभव यह नाम ही अनुपन्न होगा, क्योंकि 7 सर्ग में शिव पार्वती का विवाह है और 8 सर्ग में उनकी कामकेल का वर्णन है। कुमार की उत्पत्ति नहीं हुई तो कैसे कुमार संभव नाम उचित होगा। इस कारण 8 सर्ग के बाद कालिदास की विघ्न के कारण इसको समाप्त नहीं कर पाए और परवर्ती किसी कवि ने उनके नाम से अन्य सर्गों की रचना की, ऐसा मानना होगा। रघुवंश महाकाव्यों में श्रेष्ठ माना गया है। इसमें दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का चरित्र वर्णन बहुत ही प्रौढ़ के साथ किया गया है। इसमें कुल 19 सर्ग हैं। दिलीप, रघु, अज, दशरथ तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अन्य राजाओं का बहुत मनोरंजक ढंग से वर्णन किया गया है। आर्य संस्कृति का लोकोतिशाही उत्कृष्ट चित्र इसमें अंकित है। कहते हैं कि इसके 5 सर्ग में सरस्वती का बीज मंत्र विद्यमान है। कांता सम्मित शब्दों में आर्य संस्कृति का चित्रांकन करने के कारण रामायण, महाभारत और पुराणों के समान इसका उत्कर्ष निर्विवाद है। मालविकाग्निमित्र महाकवि कालिदास की रूपक रचना में यह प्राथमिक कृति है। इसमें 5 अंक हैं। महाकवि ने इसमें अपने समय के विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का उत्कृष्ट वर्णन किया है। कालिदास का काल निरूपण करने में इस नाटक ने मार्गदर्शन का कार्य किया है। विक्रमोवर्ती यह 5 अंकों का त्रोटक है। उपरूपक के नाटिका आदि 18 भेदों में त्रोटक द्वितीय है। इसमें महाभारत के कथानक के आधार पर उर्वशी और पूर्वाक के प्रेम का वर्णन किया है। इसमें महाकवि ने विप्रलम्ब श्रृंगार को मनोहर रीत से प्रदर्शित किया है। देखने से महाकवि की भारतीय नाट्य शास्त्र पर अधिकारिता प्रदर्शित होती है। इसके नामकरण में भी महाकवि ने अपने आश्रयदाता का परिचय ध्वनित किया है। अभिज्ञान शाकुंतल यह संस्कृत साहित्य में ही नहीं प्रसिद्ध विश्व के उत्कृष्ट नाटकों में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें महाभारत में वर्णित चंद्रवंश में प्रसूत महाराज दुष्यंत और शकुंतला की कथा 7 अंकों में अतिशय मनोरंजक शैली से प्रस्तुत की गई है। इसका भारत के बाहर भी पर्याप्त मात्रा में सम्मान हुआ है। इसका अनुवाद बहुत सी भाषाओं में हुआ है। जर्मनी के महान दार्शनिक कवि गेटे ने आनंद विवल होकर अभिज्ञान शाकुंतल की जो प्रशंसा की है, उसी का यह संस्कृत प्रतिरूप है। वासंतम कुसुमम फलम चयुगपत ग्रीष्मस्य सर्वम चयत् यच्चान्यन् मनसो वर्षायन मतः संतर्पणम मोहनम एकीभूतम भूतपूर्वम अथवा स्वर्लोक भूलोकयोर् ऐश्वर्य यदि वंचसि प्रिय सखे शाकुंतलम से व्यताम। महाकवि कालिदास ने आर्य नारी के पतिव्रत्य की महत्ता का चूड़ांत निदर्शन इसमें प्रस्तुत किया है। मेघदूत प्रस्तुत होने से अब मेघदूत के विषय में कुछ बातें लिखी जाती हैं। जिस विषय को लेकर महाकवि कालिदास ने मेघदूत की अवतारणा की वह अत्यंत मर्मस्पर्शी है। इसमें दो प्रकरण हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। कोई यक्ष कार्य में प्रमाद करने के कारण अपने प्रभु कुबेर के श्राप से कैलाश पर्वत में अवस्थित अलकापुरी से एक साल के लिए निर्वासित हुआ। इस प्रकार अपने स्थान से निर्वासित होकर अपनी प्राणेश्वरी प्रियतमा से बिछोड़ने से शोक से क्रीत होकर वह कामुक यक्ष रामगिरि के निर्जन सुरंग के आश्रमों में रहा करता था। वह आषाढ़ मास के प्रथम दिवस में नवीन मेघ को देखने से अपनी प्रियतमा की स्मृति से शोकाकुल होकर बहुत ही अधीर हो गया। कामार्थ होने से उस चेतन और अचेतन की कुछ सुध ना रही। मेघ को पुष्करावर्तकों के वंश में उत्पन्न कहकर यक्ष ने उसे अपनी प्रियतमा के पास संदेश कहने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि मेघ उसके दूत कर्म को स्वीकार न भी करे तो भी उसमें यांचा मोघा बरमद गुणे नाध में लब्ध कामा एक छ इस उक्ति के अनुसार विशेष दुख नहीं होगा। मेघ को किस किस मार्ग का अवलंबन करना होगा और क्या क्या दृश्य देखना पड़ेगा, उन सबको यक्ष एक एक करके पूर्व मेघ में सविस्तार वर्णन करता है। रामगिरि से उत्तराभिमुख होकर जाते जाते अमरकूट पर्वत, नर्मदा नदी, विदिशा नगरी, वेत्रोती नदी, मालव की राजधानी उज्जैनी और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इन सबको अतिक्रमण कर मेघ को अपने वासस्थल अलका में पहुंचाने के लिए यक्ष निर्देशन करता है। उत्तर मेघ में यक्ष अलकापुरी और वहां पर विद्यमान अपने प्रसाद का अत्यंत मनोहर वर्णन करता है। वह उद्वेल हृदय से अपनी प्रियतमा की सौंदर्य संपत्ति का कथन करते करते कल्पना के बल पर उसकी विरहावस्था का निरतिशय करुणा भाव से वर्णन करने लग जाता है। यक्ष अपनी प्राणेश्वरी को पहचाने के लिए उसके लक्षणों को बतलाकर मैं एक साल के अंत में जकड़ में साप की निवृत्ति होने पर प्रियतमा के पुनर्मिलन की प्रत्याशा से प्राण धारण कर रहा हूँ। इस वार्ता को प्रियतमा से कहने के लिए और उसे धीरज बांधाने के लिए मेघ से सविनय अनुरोध करता है। मेघ का गर्जन जैसे मनोहर ध्वनि वाला है, उसी तरह काव्य ध्वनि भी अत्यंत गंभीर और मर्मस्पर्शी है। ध्वनि ही काव्य का प्राण है। यक्ष कैसे अपने कर्तव्य से च्युत हुआ और उसका कनकवलय कैसे भ्रष्ट हुआ, इसे सहृदय पाठक ही समझ सकेंगे। दुस्सह ग्रीष्म के अवसान में मेघ का आलोक होने पर मनुष्य के हृदय में उसमें भी विशेषता प्रणयी और प्रणयिनी के हृदय में कैसी भावधारा प्रवाहित होने लगती है, यह विषय सुहृदय व्यक्ति के हृदय से ही संवेद्य हो सकता है। महाकवि ने पूर्व मेघ में केवल उद्दीपक पदार्थों का वर्णन किया है और उत्तर मेघ में उनका वर्णनीय विषय है अलकापुरी, यक्ष का आवास गृह और उसकी प्राणाधिका प्रियतमा। इस प्रकार महाकवि ने संभोग श्रृंगार की पुष्टि के लिए साप प्रवास मूलक विप्रलम्ब श्रृंगार का अति मनोहर प्रदर्शन किया है। कहा भी गया है, नवीना विप्रलम्बेन संभोग पुष्टि मनुते प्रसायते ही वस्त्रादौ भूयान रागो विवर्धते। महाकवि कालिदास यद्यपि अनेक छंदों के प्रयोग में सिद्ध हैं, तथापि उन्होंने में अत्यंत श्रुति मधुर मंदाकांता छंद का अवलंबन किया है। कालांतर में प्रायः समस्त दूत काव्यों में उनका अनुकरण किया जाने लगा। प्रकृत प्रबंध का नायक यक्ष विरह से कातर है, शोक और दुख के कारण उसकी क्रियाशक्ति नितांत मंद पड़ गई है। इसी से वह विहाग के समान करुण और मर्मस्पर्शी स्वर में मंदाक्रांता छंद में रुक रुक कर कांता के पास भेजने के लिए संदेश बता रहा है। यहाँ पर हृदय के भाव के साथ छंद का अपूर्व साहचर्य हो गया है। काव्य की ध्वनि छंद और रीति यक्ष के करुण कंठ में मिश्रित होकर एक अपूर्व काव्य की सृष्टि हो गई है। भारतवर्ष के मानचित्र में जिन जिन स्थानों का नाम निर्देश देखा जाता है, महाकवि कालिदास के इसी काव्य रूप मानचित्र में उन स्थानों की मनोरम झांकी हमें मिल जाती है। कहीं मयूर कंठ उन्नत करता हुआ दिखाई पड़ता है, तो कहीं पर नदी के विमल सलिल में उद्वर्तन करती हुई सफरी दृष्टिगोचर होती है। कहीं पर राजपथ में युवतियों की कवरी से गिरा हुआ पुष्प देखा जाता है, तो कहीं पर कोई अंगना करतालिका से मयूर को नचा रही है और उसका बाहुभूषण कांचन कंकण की रणरण ध्वनि हो रही है। इस प्रकार महाकवि ने प्रकृति के मनोरम और काव्य चित्रों से अपनी इस कृति को सजाया है, परंतु इस लोकोत्तर रचना में केवल प्रकृति का मनोरम चित्र नहीं है। विचार पूर्वक निरीक्षण करने वालों को इसमें चरित्र का अनुकरणीय आदर्श भी मिल जाता है। इसका नायक यक्ष देवयोनि विशेष है, अलकापुरी का वह नागरिक है। स्वर्ग के समान अलकापुरी भी केवल भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं, और यक्ष योनि केवल भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। इस स्थिति में वह साप प्राप्त मर्तलोक में भी नरलोक की रमणी से परिणय कर उसके सहवास द्वारा साप काल को बिता सकता था, पर नहीं, एक पत्नी व्रत का व्रती होकर उसने विक्षिप्त प्रायता से साप काल का अतियापन किया। इस प्रकार उसकी पत्नी ने भी सहधर्म चारणी के धर्म का उत्कृष्ट आचरण कर सती व्रत को अक्षत रखा है। इस प्रकार इस काव्य रत्न में उत्कृष्ट आदर्श का भी दर्शनीय दर्शन मिलता है। प्रोफेसर मैकडोनल ने इसे गीत काव्य विकरण में लेरिस कहा है। यह समुचित ही प्रतीत होता है। मेघदूत में संजीवनी नाम की टीका के रचयिता महोपाध्याय मल्लिनाथ जी ने मतानुसार पूर्व मेघ में 63 और उत्तर मेघ में 52, इस प्रकार इस काव्य में कुल 115 श्लोक हैं। अन्य टीकाकारों के मत में इनके सिवाय कुछ अधिक श्लोक माने गए हैं, परंतु मल्लिनाथ जी ने उन्हें संक्षिप्त मानते हैं। 14वीं शताब्दी के दक्षिणावर्तनाथ ने कुल 110 श्लोकों की व्याख्या की है। टीकाकारों में मल्लिनाथ से सम्मत पाठ ही सबसे उत्कृष्ट और प्रामाणिक है। 833 ख्रीष्टाब्द में अमोघ वर्ष के राज्यकाल में जिनसेन नाम के जैन विद्वान ने पार्श्वाभ्युदय नाम के अपने ग्रंथ काव्य में 364 मंदाकांता वृत्तों में मेघदूत के श्लोकों के चरणों को समस्या पूर्ति करने के लिए अवलंबन किया है। इस प्रकार पार्श्वाभ्युदय में स्थित मेघदूत के श्लोकों का परिगणन करने पर 9वीं शताब्दी में मेघदूत का पाठ किस प्रकार था, इसका स्वरूप जाना जा सकता है। परंतु पार्श्वाभ्युदय स्थित पाठ के साथ मल्लिनाथ सम्मत मेघदूत के पाठ का पार्थक्य है। इसी प्रकार नेमदूत नामक काव्य के कर्ता विक्रम कवि ने मेघ संदेश के पद्यों के चतुर्थ चरण को अपने काव्य में चतुर्थ चरणों में रखा है। ये विक्रम की 15वीं शताब्दी में प्रादुर्भूत हुए। नेमदूत में कुल 126 श्लोक हैं। संस्कृत साहित्य में मेघदूत की जो नवीनता और मनोहरता है, उसका विश्व के साहित्य संसार में अनुकरण भी पर्याप्त मात्रा में हो गया है। संस्कृत साहित्य में ही अब तक कुल 51 दूत काव्य की रचना जानी गई है। इनमें 12वीं शताब्दी के धोई कवि का पवन दूत, 13वीं शताब्दी के वेदांत देशिक का हंस संदेश, 15वीं शताब्दी के रूप गोस्वामी का हंस दूत और 17वीं शताब्दी के कृष्णानंद सार्वभौम का पदांक दूत इनमें दूत काव्य अधिक प्रसिद्ध है। इनके सिवाय 15वीं शताब्दी के उद्दंड शास्त्री और जैन विद्वान मेरतुंग के यथाक्रम कोकिल संदेश और जैन मेघदूत, 17वीं शताब्दी के वेदचंद्र सूरिका पवनदूत और 18वीं शताब्दी के बैद्यनाथ का तुलसीदूत ये भी प्रसिद्ध हैं। किंतु कवि कुलगुरु और बाग देवता के विलास रूप कालिदास के मेघदूत में जो कमनीयता, श्रुति मनोहरता और प्रशिक्षण नूतनता आदि विशेषता पाई जाती है, वह अन्यत्र कहाँ मिल सकती है। संस्कृत साहित्य के महान नाटककार भवभूति ने भी मालती माधव नाम के अपने प्रकरण में मेघ के प्रति माधव से कंचित सौम्य प्रिय सहचरी विद्युदा लिंगतित्वाम आविर्भूत प्रणय सुमुखाश्चातका वा भजन्ते पौरस्त्यो वा सुखयति मुरुत साधु संवाहनाभे विश्वविभ्रत तुरपति धनुर लक्ष्म लक्ष्मी वदेतत। जकट में मालती माधव 9:25। दैवात्पश्यर जगति विचरन मत्प्रिया मालतीम चेत दास्वास्यादौ तदनु कथयेर माधवीयाम अवस्थाम आसान तंतुर्न च कथयता अत्यंतम उच्छेदनीय प्राण त्राणम कथमपि करोत्यायताख्या स एक। जकट में मालती माधव 9:26। ऐसा संदेश कहलाया है। इन दोनों श्लोकों में स्पष्ट रूप से मेघदूत का अनुकरण दृष्टिगोचर हो रहा है। इस प्रकार भारतवर्ष में ही नहीं यूरोप में भी मेघदूत को पर्याप्त प्रतिष्ठा और अनुकरणीयता देखी गई है। जर्मनी के दार्शनिक तथा कविश्रेष्ठ गेटे और उनके मित्र सीलर ने इसकी बहुत प्रशंसा की है। सीलर तो मेघदूत से प्रभावित होकर उनके अनुकरण पर मोरिया स्टुअर्ट लिखकर चिरस्मरणीय हो गए हैं। मेघदूत की टीकाएं। मेघदूत पर लगभग 32 टीकाएं हैं, ऐसा विदित होता है। उनमें दक्षिणावर्तन की टीका, चैत्यवर्धनी, मल्लिनाथ की संजीवनी और पूर्ण सरस्वती की विद्युलता ये टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। मेघदूत का उपजीव्य। महोपाध्याय मल्लिनाथ जी का कहना है कि भगवान रामचंद्र ने सीता जी के लिए हनुमान को जो संदेश दिया था उसी को मन में रखकर महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की है। सूक्ष्म विचार करने पर यह बात समीचीन प्रतीत होती है। जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु। जकट में पूर्व मेघ 12 जकट बंद। रघुपति दय रंगितम मेखलासु। जकट में पूर्व मेघ 12 जकट बंद। दशमुख भुजो श्वासित प्रस्थ संधे। जकट में पूर्व मेघ 58 और इत्याख्याते पवन तनयम मैथिली वोन्मुखी सा। जकट में उत्तर मेघ 33। इन श्लोकों को देखने से भी यह उक्ति सबल हो जाती है। इसी प्रकार रामायण में ही कहा गया है, हनुमान जी का हाथी और पर्वत की चोटी से सादृश्य तथा काम रूपत्व, जकट में इच्छा के अनुसार रूप लेना, महाकवि ने मेघ में भी दिखलाया है। इसी प्रकार सुबेल पर्वत पर स्थित लंका के समान कैलाश पर्वत में स्थित अलका का वर्णन करने से लंका में हनुमान के समान अलका में मेघ का सायंकाल में प्रवेश कराने से हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने के लिए जैसे रात को शरीर छोटा किया था उसी प्रकार यक्ष संदेश कहने में मेघ का छोटा शरीर तराने से अशोक वाटिका में रामचंद्र के विरह शोक से सीता जी की तरह यक्ष पत्नी की करुण अवस्था के वर्णन करने से तथा संदेह कहने के समय रामायण के समान अभिज्ञान देने से तथा अन्य अनेक उपपत्तियों से भी महाकवि कालिदास ने अपनी कृति मेघदूत में रामायण का ही भली भांति से अनुकरण किया है। यह बात अच्छी तरह हृदयंगम हो जाती है। इन सब बातों को महाकवि ने कहीं समासोक्ति से और कहीं अप्रस्तुत प्रसन्नता से तो कहीं व्यंजना से दिखलाया है। सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करने वाले सहृदयों को इसका पता चल जाता है। इस प्रकार किसी को दूत बनाकर किसी आत्मीय के पास संदेश भेजने की बात क्या वेद क्या लोक में भी बहुत स्थलों पर मिलती है। श्रीमद् भागवत में शिशुपाल से अपने विवाह की बात निश्चित होने पर रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को दूत बनाकर भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा था। दूत काव्य का सर्वप्रथम प्रणयन महाकवि कालिदास ने किया है। बहुभाषा वेत्ता बंगीय विद्वान हरिनाथ देने कालिदास के पूर्व चीन के कवि शिवकांग ने मेघ को दूत बनाया है ऐसा लिखा है, परंतु शिवकांग का समय ख्रिस्ट की द्वितीय शताब्दी है, इसलिए विक्रम की प्रथम शताब्दी में विद्वान महाकवि कालिदास दूत काव्य के सर्वप्रथम सृष्टा हैं। इसमें किसी प्रकार की अनुपत्ति नहीं है। मेघदूत के कथानक का उपजीव्य। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मेघदूत में संदेश प्रेषण के विषय में उपजीव्य रामायण है। अब मेघदूत में जो कथानक है उसका उपजीव्य क्या है, इसका विचार प्रस्तुत स्थल में अभिष्ट है। यक्ष को उसके स्वामी अलकाधीश्वर कुबेर ने जो साप दिया उसका आधार ब्रह्मवैवर्त पुराण है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में विद्यमान योगिनी नाम की अषाढ़ कृष्ण एकादशी के महात्म में एक कथा है। वह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बतलाई है। वह इस प्रकार की है। अलका के अधिपति यक्षराज कुबेर शिव जी के भक्त थे। वे प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते थे। कुबेर की शिव पूजा में प्रतिदिन फूलों को तोड़कर लाने वाला हेममाली नाम का एक अनुचर था। उसकी पत्नी विशालाक्षी नाम की बहुत सुंदरी थी। एक दिन की बात है कि हेममाली मानसरोवर से बहुत से फूलों को तोड़कर भी कामवश होकर अपने स्वामी कुबेर के पास न जाकर पत्नी के समीप रहा। उधर कुबेर जी मध्याह्न में शिव जी की पूजा करने के लिए फूलों की प्रतीक्षा में बैठे थे। जब नियत काल का अतिक्रमण हुआ तब उन्होंने शिव जी का तिरस्कार करने के कारण उस यक्ष को कुष्ठ रोगी होकर साल भर कांता से बिछुड़कर मर्त्यलोक में रहने के लिए शाप दिया। इसी प्रकार महाकवि ने भी अलकापुरी में रहने वाले किसी यक्ष को शाप व चित्रकूट में रहने वाला बताया है। अषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने से यक्ष शाप निर्मुक्त हो गया। इस पौराणिक अंश को काव्य के अनुगण न होने से महाकवि ने छोड़ दिया है। इस प्रकार महाकवि ने काव्य के उपयुक्त पुराण का अंश लेकर कथानक की रचना की और अनुपयुक्त अंश छोड़कर यक्ष से मेघ के द्वारा प्रिया को संदेश प्रेषण के प्रसंग में अपनी अनुपम कल्पना शक्ति का प्रदर्शन किया है। ऐसे ही विषय को लेकर कहा भी गया है कि नहीं कवे ऋतिवृत्त मात्रेणात्मलाभ इतिहासादेर्यवत सिद्धे विकट में ध्वनियालोक, अर्थात कोरा वृत्त तो इतिहास और पुराण से ही सिद्ध हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कवि को कवित्व सिद्धि के लिए रस आदि विषयों की प्रधानतया अवतारणा करनी चाहिए। इस प्रकार महाकवि कालिदास ने संदेश प्रेषण की प्रणाली में रामायण का और कथानक में अंततः ब्रह्मवैवर्त पुराण का अनुसरण कर इन्हीं दो भित्तियों पर अपने अनुपम वाग विलास का प्रकाश किया है। इस विषय का मैंने आज से 9 वर्ष पूर्व नेपाल से निकले हुए संस्कृत संदेश नाम के मासिक पत्र के प्रथम वर्ष के चतुर्थ अंक में प्रकाशन किया था। मूल ग्रंथ के विशेष प्रमाण के लिए पाठक महोदय इसी में अन्यत्र प्रकाशित संस्कृत भूमिका के रूप में उसका निरीक्षण करने का अनुग्रह करें। मेघदूत का अनुवाद। विश्व की अनेक भाषाओं में मेघदूत का अनुवाद हो चुका है। इसका सबसे प्राचीन अनुवाद ख्रिस्ट की 13वीं शताब्दी में तिब्बती भाषा में हुआ था, जिसकी एक प्रति तंजौर के ग्रंथ संग्रह में सुरक्षित है। इसी के आधार पर सन 1906 में जर्मन विद्वान डॉक्टर बेक ने जर्मन भाषा में मेघदूत का अनुवाद किया। सन 1813 में एच विल्सन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। सन 1847 में बोन में गिल्डमिस्टर ने लैटिन में और सन 1847 में मैक्स मूलर ने जर्मनी में मेघदूत का अनुवाद किया। लंकावासी टीबी पान बोरो ने सन 1883 में कोलंबो से सिंगल भाषा में अनुवाद किया। अमेरिका के विद्वान आर्थर राइडर ने मेघदूत का अनुवाद पद्य अनुवाद किया है। स्वर्गीय राजा लक्ष्मण सिंह ने ब्रज भाषा में अति मधुर अनुवाद किया है। इसी प्रकार आचार्य केशव प्रसाद मिश्र ने हिंदी में समश्लोकी अनुवाद किया है। सेठ कन्हैया लाल पोद्दार जी ने भी समश्लोकी अनुवाद के साथ हिंदी मेघदूत विमर्श लिखा है। हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय के भूतपूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी मेघदूत एक अध्ययन नामक ग्रंथ में मेघदूत के विशद अनुवाद के साथ अतिशय महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विश्लेषण किया है। पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष आचार्य श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी एक पुरानी कहानी के रूप में मेघदूत का मनोहर शैली में सविस्तार वर्णन किया है। इसी तरह स्वर्गीय सरदार रंजन राय और मोरेश्वर रामचंद्र काले आदि विद्वानों ने मेघदूत के संस्कृत और अंग्रेजी में व्याख्या अनुवाद और टिप्पणी आदि गवेषणापूर्ण कार्य किए हैं। बंगला मराठी गुजराती तेलुगु नेपाली और कन्नड़ आदि बहुत सी भाषाओं में मेघदूत के अनेक अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। मेघदूत का महत्व। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि न केवल दूत काव्यों में प्रत्युत विश्व के समस्त काव्यों में मेघदूत का अप्रतिम स्थान है। अब हम कुछ पंक्तियों में उसका महत्व दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। संदेश पहुंचाने वाले को दूत कहते हैं। दूत के तीन भेद होते हैं, निस्तृष्टार्थ, मितार्थ और संदेश हारक। एक जो दोनों का विकट में जिसने भेजा और जिसके पास भेजा विकट बंद भाव जानकर संदेश कहता है और कार्य को सफल करता है उसे निश्चितार्थ कहते हैं। जैसे हनुमान आदि वह सब में उत्तम होता है। दो परिमित बात कर कार्य को सिद्ध करने वाले को मितार्थ कहते हैं, वह माध्यम होता है। अभिज्ञान शाकुंतल में मिश्र कैसी मेनका की मितार्थ दूती है। भेजने वाले ने जितना कहा उतना ही कहने वाले को संदेश हारक कहते हैं। कल्पना शक्ति के अभाव से सबसे निकृष्ट है। मालती माधव में चतुर्थ अंक में नंदन से भेजा गया पुरुष संदेश हारक दूत है। रामायण महाकाव्य के रचयिता ने हनुमान जी को निश्चितार्थ के रूप में प्रदर्शित किया है। उसी तरह महाभारत में व्यास जी ने युधिष्ठिर के दूत भगवान श्री कृष्ण को कौरवों की राज्यसभा में निश्चितार्थ के रूप में चित्रित किया है। श्रीमद् भागवत में भी रुक्मिणी से भगवान श्री कृष्ण के पास भेजे गए ब्राह्मण निश्चितार्थ दूत के ही रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। इस स्थिति में प्रकृत प्रबंध मेघदूत में महाकवि कालिदास ने जो अचेतन मेघ को दूत बनाया है उसका इन तीन भेदों में किसमें समावेश हो सकता है? किसी में भी नहीं, क्योंकि अचेतन पदार्थ का वक्ता का वाक्य आत्मसात कर पाता है ना बोधव्य के पास ही उसका संक्रमण कर सकता है। कार्य की सिद्धि की बात तो दूर रही, इसकी अनुपत्ति को लक्ष्य करके महाकवि ने सफाई दी है। धूमज्योति सलिलमरुताम सन्निपात मेघ संदेशार्था क्वपटुकरण प्राणी प्रापणीया इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यक संयाचे कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। विकट में मेघदूत, पूर्व मेघ 5। पर भले ही महाकवि इसमें मेघ को धूम ज्योति जल और वायु का समूह का कर अपनी वैज्ञानिकता अभिज्ञता दिखावे, पाठक के हृदय में कुछ संदेश बना ही रहता है कि महाकवि ने ऐसा क्यों किया। सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि इस विषय में कवि ने अपनी असाधारण प्रतिभा दिखलाई है। जहाँ साधारण व्यक्ति अधिकतर अविधावृत्ति से अपने अभिप्राय का प्रदर्शन करते हैं, वहाँ मध्यम प्रतिभा वाले लक्षणा वृत्ति के द्वारा अपने भाव को लक्षित करते हैं। परंतु परिपक्व विचार वाले व्यक्ति लक्षणा की भी सतह से ऊपर उठकर व्यंजना के द्वारा अपने आशय को सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्त करते हैं। महाकवि कालिदास ध्वनि कवि हैं। अपनी रचना में इसी वृत्ति के द्वारा उन्होंने अपनी कल्पना का अनल्प चमत्कार दिखलाया है। अचेतन होते हुए भी मेघ का इस रहस्यपूर्ण संसार में महत्वपूर्ण स्थान है। सृष्टि क्रिया में तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायुरग्नि अग्नेरापः अध्यः पृथ्वी। उपनिषद की इस उक्ति के अनुसार ब्रह्मरूप आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। तो इस पार्थिव जगत की उत्पत्ति का कारण जल है। वही जल अग्नि से उत्पन्न होता है। अग्नि तेज का उपलक्षण है। समुद्र आदि जितने जलाशय हैं, उनके रस को सूर्य नारायण अपने रश्मि समूह से विकर्षण करते हैं और वह सब अंतरिक्ष मंडल में अवस्थित मेघ में बाध्य रूप से एकत्र हो जाता है। वर्षा ऋतु में मेघ द्वारा वही जल भूमि पर गिरता है और उसी से औषधि, अन्न आदि उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भूमंडल के जीव मात्र का पोषण होता है। ग्रीष्म संतप्त चराचर जगत को इस प्रकार से मेघ जल की वृष्टि से संताप का अपनयन और औषध अन्न आदि से अध्यापन कराता है। अतः भौतिक जगत में मेघ का अत्य महत्व है। जल पूर्ण नील मेघ में ही वितरण की शक्ति निहित है और वही चराचर का योग और क्षेम का निर्वाहक है। अतः जैसे शक्तिहीन शिव सब समान है, इसी तरह जलहीन मेघ का शुक्ल वर्ण वाला होने पर भी कुछ मूल्य नहीं है। अर्थात न तो वह संताप का अपनोदन कर सकता है, न वृष्टि के द्वारा सृष्टि का कार्य ही संभाल सकता है। इसलिए तार्किक प्रवर विश्वनाथ भट्टाचार्य ने अपनी कारिकावली में नूतन जलधर रुचय अर्थात नए मेघ की तुल्य कांति से संपन्न लिखकर भगवान श्री कृष्ण के विशेषण का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार जैसे सृष्टि प्रक्रिया में मेघ का महत्वपूर्ण कृत्य है, उसी प्रकार संहार में भी उसकी शक्ति असीम है। प्रलय समय में वह संवर्त मेघ में रूप में अनवरत जल की वृष्टि कर और सैकड़ों वर्षों तक वृष्टि कार्य अवरुद्ध रख प्रखर सूर्य कर की दुस्सहता में सहायक बनकर निखिल विश्व का संहार करता है। इस कारण से भगवान के विराट शरीर में एक अंग के रूप में अवस्थित उस मेघ में अंग और अंगी में अभेद भावना रख परमात्म बुद्धि से कवि निबद्ध वक्ता यक्ष ने अपने संदेश वहन कार्य के लिए उपयुक्त पात्र बनाया है। इसी विशेषता के कारण मेघ का कहीं भगवान कृष्ण के तो कहीं भगवान शंकर के शरीर के उपमान के रूप में कीर्तन किया गया है। इसी प्रकार से इंद्रो मयाभि पुरूप ईयते रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तम स्त्री कुमानुत वा कुमारी। उपनिषदों के परमात्मा स्वरूप ऐसे वचनों के अनुसार महाकवि ने जानामित्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः ऐसा लिखकर मेघ को काम रूप जगत में इच्छा के अनुसार अनेक रूपों को लेने वाला बतलाया है। इसी कारण महाकवि कालिदास ने चेतन किसी व्यक्ति का ग्रहण न कर यक्ष के द्वारा मेघ को संदेशवाहक दूत बनाकर अपनी अनोखी सूझबूझ को ध्वनित किया है। मैंने अपनी टीका में संजीवनी, विद्युलता आदि व्याख्याओं से विशेष सहायता ली है। अन्यान्य जिन ग्रंथकारों से मुझे अपनी कृति में सहायता मिली है, उन सबके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। उपोद्घात में सहायता देने के कारण चिरंजीव श्री दिनेश चंद्र रेग्मी MA प्रीवियस और जगदीश चंद्र शर्मा MA प्रीवियस को शुभाशीर्वाद ज्ञापन करता हूँ। विनीत शेषराज शर्मा, रामनवमी विक्रम संवत 2021।